वह व्यवस्था न एच्छन न चाहते हुए दैत्यपतयः दैत्यों के नेता महापुरुष श्री भगवान का चेष्टितम प्रयास न नहीं गृहणीम ले लेंगे वयम हम सभी दैत्यगण पुच्छम पूंछ अहे सर्प की अंगम शरीर का भाग अमंगलम अशुभ निकृष्ट स्वाध्याय वैदिक अध्ययन से श्रुत तथा वैदिक ज्ञान से संपन्ना पूर्ण तथा सज्जित जन्म तथा कार्यकलापों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे श्री भगवान तथा देवताओं ने पकड़ लिया था क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तात्पर्य, दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है। हमने हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गोरक्षा का प्रचार करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने मात्र के लिए यह दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर हैं, जैसा कि स्वाध्याय श्रुत संपन्ना शब्दों से यहाँ वर्णन हुआ है। उनका कहना है कि उनकी वैज्ञानिक विधि से यह पता चला है कि दूध खतरनाक होता है और गायों की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। यह मतभेद सदैव चलता रहेगा, निस्संदेह यह अनादिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसी ही होड़ थी। दैत्यों ने अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना चाहा और दैत्यों की पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, जो खतरनाक नहीं था। लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यही देवता विष पान करते तो दैत्य यह संकल्प करते, हम भी विष में हिस्सा बांटकर और इसे पीकर शान से क्यों न मरें। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी शब्दों से एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है। यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और संस्तुत कार्यों को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए हुए है तो फिर वह दैत्य क्यों कहलाए। इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो तथा उच्च कुल में क्यों ना जन्मा हो, किंतु यदि वह ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वह दैत्य असुर है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, यथा हिरण्यकश्यपु रावण तथा कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति जो राज परिवार में जन्मे थे और युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करने के कारण राक्षस या दैत्य कहलाते थे। कोई कितना ही सुशिक्षित क्यों ना हो किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध ना हो, श्री भगवान के प्रति आज्ञाकारिता ना हो तो वह असुर है। इसका वर्णन स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो दुष्कृति निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो नास्तिक प्रकृति के असुरों का स्वभाव ग्रहण करते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आसुरम भावम, ईश्वर के अस्तित्व को या उनके दिव्य उपदेशों को न स्वीकार करने का सूचक है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त है, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करने के बजाय मनमाने ढंग से टीकाएं करते हैं और सभी को सबको भ्रमित करते हैं। इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह आसुरी ईश्वर विहीन व्यक्तियों से सचेत रहे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वर विहीन असुर सुशिक्षित भी हो तो भी उसे मूढ़ नराधम तथा माया अपहृत ज्ञान समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद के सातवें अध्याय का की तीन श्लोकों का अध्ययन चिंतन मनन और कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पूर्व श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। वो 10 विषय क्या हैं? तो श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरो ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है दूसरे स्कंद में कि श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं और उन 10 विषयों को 12 स्कंदों में चर्चा की गई है। और इन 10 विषयों की चर्चा का मुख्य लक्ष्य है क्या? तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद के 10 अध्याय के 2 श्लोक में कि इन 10 विषयों का मुख्य लक्ष्य है आश्रय तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझना। आश्रय तत्व को समझना ही इन सारे विषयों का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए इस 8वें स्कंद में भगवान की मन्वंतरानुकथा, भगवान मन्वंतर में क्या क्या लीलाएं करते हैं, इन लीलाओं की चर्चा की गई है। और इस प्रसंग में विशेष रूप से जिस प्रसंग की यहां चर्चा हो रही है वह है समुद्र मंथन लीला। समुद्र मंथन लीला में भगवान छठे मन्वंतर में चाक्षुष मन्वंतर में भगवान अजित की दिव्य लीलाओं का यहां वर्णन किया जा रहा है। तो इसके पूर्व कुछ अध्यायों में और अन्य कई श्लोकों में यहां चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार से इंद्र आदि देवताओं को दुर्वासा मुनि के द्वारा शाप मिला जो कि विष्णु पुराण में वर्णन किया गया और शापग्रस्त होकर के अपनी श्री से हीन होकर सारे के सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से दैत्यों का आक्रमण और दैत्यों के द्वारा किया गया जो अत्याचार है उसके विषय में बताए और भगवान ने उन्हें सलाह दी है कि आप दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन प्रारंभ कीजिए। तो इससे पूर्व ये चर्चा हो चुकी है और अब तक समुद्र मंथन की केवल और केवल भूमिका ही चल रही थी श्रीमद् भागवत में, और इस अध्याय से समुद्र मंथन की पूर्ण लीला, समुद्र मंथन की जो लीला है वह यहां इस अध्याय से प्रारंभ हो रही है, दशम आठवें स्कंद के सातवें अध्याय से। और इस अध्याय में समुद्र का मंथन होगा और विष निकलेगा जिसे भगवान शिव ने पान किया है। तो यहां पहला श्लोक, जिसकी पहला दूसरा और तीसरा श्लोक में क्या चर्चा की जा रही है, इसके विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहां सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं कि जब जब देवताओं को और दैत्यों को संधि करके भगवान ने कहा कि हे देवताओं और दैत्यों, आप सब समुद्र मंथन प्रारंभ कीजिए, तो समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उठाना प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उठाने पर भी देवता और दैत्य मंदराचल के नीचे दब गए और कई देवता और दैत्य मारे गए। फिर भगवान अजित स्वयं वहां अवतार लेकर के उस मंदराचल को उठा करके, गरुड़ पर उठा करके तट के निकट लेकर के आए, और यहां पर जब तट के निकट ले आए तो भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया कि हे देवताओं, आप जाकर के नागराज वासुकी को यहां आमंत्रित कीजिए। और इसी श्लोक की चर्चा यहां हो रही है कि ते नागराज आमंत्र्य फलभागेन वासुकिम, नागराज वासुकी को यहां आमंत्रण दिया जाए और उनको इस मंदराचल में रस्सी के रूप में बांध करके इस मंदराचल से इस समुद्र का मंथन किया जाएगा। तो श्री भगवान के द्वारा यह उपदेश पाकर के सारे देवता श्री नागराज वासुकी के पास गए, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि श्री वासुकी नागराज ने कुछ भी नहीं कहा। जब देवता उनके पास गए और कहे कि हे वासुकी जी, आप आइए और आप पर्वत का मंथन करने, समुद्र का मंथन करने में हमारी सहायता कीजिए, तो कौन चाहेगा कि अपने शरीर को पूरा पर्वत में लपेट करके और मुझे घर्षण करते हुए इस समुद्र का मंथन हो। तो वासुकी मौन रह गए। इसीलिए नीति शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को ना कहना हो तो कई प्रकार से ना कहा जा सकता है। इसलिए नीति शास्त्र कहता है मौनम काल विलंबम च, यदि किसी को ना कहना हो तो सबसे पहले मौन रह जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जब कोई कार्य करना होता है तो मौन रह जाते हैं, मौन रह गए तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि वो आपका कार्य करने वाले हैं नहीं। तो मौनम काल विलंबम च प्रयाणम भूमि दर्शनम, और काल विलंब करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल आपका कार्य होगा, कुछ समय के बाद करेंगे, तो वहां पर भी समझना चाहिए कि वहां वह आपका कार्य सफल होने वाला नहीं है। और प्रयाण भूमि दर्शन, और कोई कार्य आए तो प्रयाण, वो कहते हैं कि मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ समय बाद आपसे मिलते हैं, तो उसमें भी समझना चाहिए कि यह कार्य संपन्न होने वाला है नहीं। और भूमि दर्शन, यदि कोई व्यक्ति को आप कुछ कहें और वो भूमि का दर्शन करने लगे तो वहां भी समझ में आता है कि वह कार्य नहीं होने वाला है। तो न कहने की ये छह विधियां हैं, मौनम काल विलंबम च प्रयाण भूमि दर्शन भ्रिकुटी अन्य मुखी वार्ता, अपनी भ्रिकुटी अपनी भौहों को टेढ़ा करने लगे, अन्य मुखी वार्ता करने लगे तो नकारा षड विधा स्मृता। इस प्रकार से न कहने की ये छह विधियां हैं। तो यहां वासुकी ने भी ना कह दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इस श्लोक में भगवान के द्वारा देवताओं को प्रेरित किया गया था तो देवता गए और वासुकी जी से कहा कि आपको भी अमृत में फल भाग मिलेगा, इसलिए हे वासुकी जी आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। और तब वासुकी नाग माने कि ठीक है मैं आऊंगा, मैं आपके समुद्र मंथन में आपकी सहायता करूंगा। और फिर वासुकी नाग को वहां समुद्र मंथन के लिए मंदराचल में बांधा गया। और आरे भिरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वह, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से आरे भिरे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो क्या समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया? नहीं, समुद्र मंथन वास्तव में प्रारंभ नहीं हुआ। संस्कृत के एक सूत्र के अनुसार वर्तमान सामीप्य वर्तमान वत, जब कोई कार्य बस होने ही वाला हो तो उसे वर्तमान वत ही बताया जाता है। इसलिए यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आरे भिरे, यानी वहां प्रारंभ हो गया, मानो प्रारंभ करने ही वाले हैं। और तत्रैच्छन तनैच्छन दैत्यपतियो महापुरुष चेष्टितम, इसके बाद भगवान श्री हरि उन्होंने सर्प के मुख अगले भाग को जाकर के पकड़ लिया। तो यहां पर इसी श्लोक की चर्चा आज हम कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने सर्प के वासुकी के अगले भाग को पकड़ लिया और दैत्य स्वाभाविक रूप से जो भगवान का ही अनुसरण करते हैं वे भी जाकर के सर्प के अगले मुख के भाग को ही पकड़ लिया। लेकिन इस पर सारे के सारे जो दैत्य थे वे क्रोधित हो गए, क्रुद्ध हो गए, कुछ नहीं कहे, बोले कि तनाइच्छन दैत्यपत्यो, हे देवताओं तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कुल में हमसे बड़े हो, कुल में तो तुम हमारे समान हो, कश्यप से हमारा भी जन्म हुआ, दिति और दनु से हम दानवों का और दैत्यों का जन्म हुआ, इसलिए कुल में तुम हमसे समान नहीं हो, क्या विद्या में तुम हमसे समान हो। तो दैत्यों ने कहा कि नहीं, विद्या में भी तुम हमसे समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मृत संजीवनी विद्या है, मैं दानव के पास बड़ी बड़ी विद्या है जिनके द्वारा वह मैं दानव त्रिपुर नगरी का निर्माण कर लेता है। तो वास्तव में देखा जाए तो यहां स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी, स्वाध्याय में श्रुत संपन्न वेदों के आचरण में और वेदों के ज्ञान में, और प्रख्याता हमारी ख्याति भी बहुत अधिक है, और जन्म और कर्म में, जन्म के आधार पर भी यदि देखा जाए तो हे देवताओं हम दैत्य तुमसे श्रेष्ठ हैं, और कर्मों में भी, अभी तो तुमने मुंह की खाई है, अभी हमने आपको युद्ध में हराया, तो कर्म में भी हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ होने के कारण हम इस सर्प के पीछे के भाग को नहीं पकड़ेंगे। क्यों क्यों ये पीछे के भाग को नहीं पकड़ेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैत्य कह रहे हैं न गृहणीमो वयम पुच्छम, यह पूछ का भाग हमें दे दिया आपने और मुख का भाग तुम पकड़ोगे। श्री राधा गोविंद महाराज कथा में कहते हैं कि दैत्य कह रहे थे कि अखबार में जब हमारा पटचित्र आएगा तो यही ना होगा कि देखो देखो पीछे का भाग ये पकड़े हुए थे दैत्य जन और मुख का भाग ये देवता पकड़े हुए थे। तो नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं होने देंगे, हमारी ख्याति नष्ट होगी इससे। क्यों? क्योंकि अहेर अंगम अमंगलम, तुम लोगों ने हमें इस पूछ के भाग को, अमंगल भाग को, मल मूत्र त्याग करने वाले भाग को हमें पकड़ा दिया। तो यह है मूर्खों की मूर्खता। वास्तव में यदि कोई मुख का भाग पकड़ेगा सर्प का, और सर्प के मुख के भाग को पकड़ करके जब मंथन होगा, मंथन प्रारंभ होगा, तो मुख के भाग से क्या निकलेगा? विष, ज्वाला, आंख से अग्नि निकलेगी और उसके द्वारा दैत्य लोग जलाए जाएंगे। लेकिन ये मूर्खता है, भगवान ने कोई छल कपट नहीं किया। भगवान जानते थे कि यदि मैं, यदि सारे के सारे देवता जाकर के मुख का भाग पकड़ेंगे तो अवश्य दैत्य विरोध करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम मुख का भाग पकड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं कहा और ये जानते हुए वे जाकर के मुख का भाग पकड़ लिए। तो ये भगवान की लीला वैदग्धता है जिसके द्वारा वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और मूर्खों की मूर्खता, उनकी जो मूर्खता है अपने आप ही प्रकट हो जाती है। जैसे एक बार एक मुसलमानों का गांव था, मुसलमानों के गांव में चोरी हो गई, बड़ी चोरी हुई। सुबह सुबह सारे के सारे मुसलमान एक साथ जुटे, एक सरपंच जुटे, सारे गांव वालों को बुलाया गया, वहां कहा गया कि देखिए यहां चोरी हो गई है, अब हमें पता लगाना है कि चोरी किसने की है। तो एक उसमें बुद्धिमान मुसलमान था, उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया चोर कौन है। तो सब लोग उसके सामने देखने लगे, सब अचंभित हो गए कि अरे इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया कि चोर कौन है। तो वो कहने लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जो चोर था वो तुरंत सोचा कि मैं तुरंत अपनी दाढ़ी में से तिनका निकाल करके फेंक दूं, और जैसे वो अपनी तिनका को निकालने के लिए अपनी दाढ़ी में हाथ लगाया तो उसे पकड़ लिया गया। तो यह है मुसलमान, यह है मूर्खों की मूर्खता। इसी प्रकार से दैत्य गणों को किसी ने नहीं कहा था कि आप जाकर के मुख पकड़िए, मुख पकड़ के आप विष और ज्वाला को सही है। लेकिन भगवान की ऐसी चतुर लीला और वैदग्ध पूर्ण लीला जिसके द्वारा भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं सबसे पहले जाकर के मुख पकड़ लिए। तो यह है भगवान की अद्भुत लीला। तो इसलिए मूर्खों की जो मूर्खता है, दैत्यों की मूर्खता अपने आप प्रकट हो जाती है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दैत्यों का वास्तविक जो स्वरूप है वह है वह हमेशा भगवान के विरुद्ध चलना। इसलिए वह देवता जो होते हैं वे हमेशा लाभ में रहते हैं, भक्त हमेशा लाभ में रहते हैं, और जो दैत्य होते हैं अपनी मूर्खता के कारण ही उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इस पूरे प्रसंग में, यदि हम पूरे प्रसंग पर विचार करें, यह समुद्र मंथन की जो लीला है, इस पूरे प्रसंग में देवताओं की जीत हुई और दैत्यों की हार। अमृत मिला देवताओं को, परिश्रम सबने किया, लेकिन अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान है और जहां भगवान के भक्त होते हैं, तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां ही विजय है, वहां ही श्री है। तो इस पूरे लीला पर यदि विचार किया जाए, तो वास्तव में विचार करने पर तीन प्रश्न उठेगा, तीन प्रश्न उठ सकता है कि समुद्र मंथन की यह जो लीला है भगवान की, यह अद्भुत समुद्र मंथन की लीला, इस लीला में मंथन किया किसने, किसने किया? स्वाभाविक रूप से यदि हम चर्चा करें तो पता लगता है कि समुद्र मंथन की लीला में मंथन किया देवताओं ने और दैत्यों ने। लेकिन यदि विचार करके देखा जाए तो समुद्र मंथन की लीला का उपाय किसने बताया? भगवान ने। उपाय बताने के बाद संधि का उपाय किसने बताया? श्री भगवान ने। संधि के उपाय के बाद मंदराचल पर्वत जब देवता और दैत्य लेकर आ रहे थे, गिर के मरने लगे, हतोत्साहित हो गए, उनके उत्साह को बढ़ाने का कार्य किसने किया? श्री भगवान ने। उन्होंने गरुण के ऊपर उस मंदराचल को ले आए, मंदराचल को ले करके आए, फिर वासुरी की नाग को बुलाने का उपाय किसने दिया? श्री भगवान ने। फिर वासुकी नाग को बुला करके मंदराचल से पर्वत को उठा करके देवता और दैत्य मिल करके समुद्र में रखने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन मंदराचल पर्वत नीचे डूब गया, तो फिर से उत्साह कम हो गया। सारे देवता और दैत्य दोनों का उत्साह कम हो गया, तो फिर से भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया, वह है श्री कूर्म भगवान। अवतार की जय। तो भगवान ने यह कूर्म अवतार ग्रहण करके फिर से उस मंदराचल पर्वत को उठाया, तो कार्य किसने किया? श्री भगवान ने, कूर्म अवतार के द्वारा। अब कूर्म अवतार लेकर के भी श्री भगवान जब मंदराचल को धारण किए तो मंदराचल संतुलित नहीं था, तो भगवान ने एक और अवतार ग्रहण किया। भगवान ने सहस्र बाहु अवतार ग्रहण करके अपनी सहस्र भुजाओं से भगवान उस मंदराचल के ऊपर विराजमान होकर के उसका संतुलन करने लगे। नीचे से कूर्म अवतार के रूप में, ऊपर से सहस्र बाहु अवतार के रूप में भगवान ने उस मंदराचल को नियंत्रित किया, उसका संतुलन ठीक किया। इसलिए मंदराचल को संतुलन का कार्य किसने किया? श्री भगवान ने। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने संतुलन का कार्य किया, अब देवता और दैत्य वासुकी नाग को लेकर के मथना प्रारंभ किए, लेकिन मथते मथते कुछ भी नहीं निकला। तो फिर भगवान सतोगुण की वृत्ति के द्वारा देवताओं में प्रवेश किए, रजोगुण की वृत्ति के द्वारा दैत्यों में प्रवेश किए, और तमोगुण की वृत्ति के द्वारा वासुकी नाग में निद्रा रूप में प्रवेश करके मथना प्रारंभ किया। तो फिर मथना किसने, मथने का कार्य किसने किया? श्री भगवान ने। फिर विचार किया जाए कि मथना प्रारंभ किया भगवान ने दैत्यों के रूप में प्रवेश करके, देवताओं के रूप में प्रवेश करके, निद्रा रूप में वासुकी में प्रवेश करके, ताकि वासुकी भाग ना जाए छोड़ करके कि अरे भाई अब हो गया, अब मैं नहीं मथूंगा। तो निद्रा रूप में वासुकी में प्रवेश करके भगवान ने मथना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी मथने से कुछ नहीं निकला। तो फिर से श्री भगवान ने स्वयं, अजित अवतार भगवान ने स्वयं आकर के मथना प्रारंभ किया, और इस बार भगवान ने जब मथना प्रारंभ किया, स्वयं भगवान जब लगे तो क्या निकला? विष। सबसे पहले निकला विष। फिर भगवान ने, स्वयं भगवान ने ही अपने स्वरूप से भगवान शिव के द्वारा उस विष का पान किया। विष का पान करके धन्वंतरी के रूप में भगवान ने उस अमृत को, अन्य जितनी वस्तुएं उन्हें देवता और दैत्यों को दे दिया, और भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण करके उस अमृत के कलश को लेकर के आए। तो अमृत निकालने का कार्य किया किसने? श्री भगवान ने। और अमृत निकालने के बाद भी जब दैत्यगण उस अमृत को लेकर के भागे, तो भगवान ने मोहिनी अवतार का रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पान कराया। तो यदि पूरी की पूरी लीला पर विचार किया जाए तो कार्य कर कौन रहा है? श्री भगवान। ये पूरा का पूरा समुद्र मंथन की जो लीला है, पूरी की ये पूरी समुद्र मंथन की लीला, इसमें केवल और केवल कार्यरत कोई है तो वह है श्री भगवान। और देवता और दानवों को निमित्त मात्र बना करके भगवान ने यह समुद्र मंथन का कार्य किया। इसलिए इस समुद्र मंथन की लीला पर यदि विचार किया जाए तो सबसे पहली शिक्षा यही मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को निमित्त मात्र बना करके उनसे कार्य करवाते हैं। इसीलिए श्री भगवद गीता में भी जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, अपना गांडीव रख दिए, और 11वें अध्याय में भगवान से कहे कि हे भगवान, आप मुझे अपने विश्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को। अर्जुन भयभीत हो गए कि भगवान यह कौन सा रूप है, आप कौन है। भगवान से ही पूछने लगे कि आप कौन है, ये कौन सा रूप है, आप मुझे क्या दर्शन करा रहे हैं। तो भगवान उसी स्वर में कहते हैं, कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृत्तो। हे अर्जुन, मैं काल हूं, मैं लोक का क्षय करने के लिए यहां प्रवृत्त हुआ हूं। और हे अर्जुन, तुम डरो मत, यह जो कार्य है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष युद्ध भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम् मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम् भवसव्यसाचि। भगवान अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, निमित्त मात्रम् भवसव्यसाचि, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठो उठो और युद्ध करो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, और यश को प्राप्त करो। क्यों? जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यम समुद्रम, अपने इस समृद्ध राज्य को भोग करो, शत्रुओं पर विजय पाओ। क्यों? क्योंकि मैंने मई ए वेते निहता पूर्वमेव, पूर्व में ही, पहले ही मैंने इन सबको मार दिया है, और बस तुम निमित्त मात्र बनो अर्जुन, और अपने राज्य का भोग करो। निमित्त मात्रम भवसव्यसाचि। भगवान आगे कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्णम तथा अन्यापि योद्ध वीरान, ये जितने भी योद्धा हैं, इन सबको मैंने तो पहले ही मार दिया है। भगवान कहते हैं, मया हतस्त्वम, मैंने मार दिया है इनको, लेकिन हे अर्जुन तुम क्या करो, जहि माम व्यतिष्ठा, लेकिन तुम उन्हें मारो। तो यह कैसा अद्भुत स्वभाव है भगवान का, कि भगवान अपने भक्तों को निमित्त बना करके, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा हत हो चुके, लेकिन जही, लेकिन फिर भी तुम इन्हें मारो। और युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान, युद्ध करके तुम इस यश को प्राप्त करो। तो समुद्र मंथन में भी भगवान ने अपने इसी स्वभाव को प्रकट किया कि कैसे वे अपने भक्तों को निमित्त बना करके अपने भक्तों के द्वारा ऐसा कार्य करा लेते हैं और उन्हें ऐसा यश प्रदान करते हैं, वह कार्य किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव हो ही नहीं सकता। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हुए, उन्होंने संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए यहां अवतार लिया। चैतन्य महाप्रभु का अवतार, प्रेम रस निर्यास कुरीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति कुरीते प्रचारन। प्रेम रस निर्यास और राग मार्ग भक्ति, संकीर्तन के द्वारा भक्ति का प्रचार करने के लिए और अपने आस्वादन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, फिर भी भगवान पाश्चात्य देश में जाकर के प्रचार क्यों नहीं किया? श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भगवान पाश्चात्य देश में जाकर के, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो प्रचार करने के लिए आए थे संकीर्तन का, तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे वह यश देना चाहते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने आप को निमित्त मात्रम भवसव्यसाची देखते थे कि कैसे भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही वह कार्य करके दिखाया जो कार्य भगवान ने भी नहीं किया। वह यश प्रदान किया कि देखो, मेरा सेनापति भक्त वह कार्य कर सकता है जो मैं भी कर नहीं पाया। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को निमित्त बना करके उनसे वह कार्य करा लेते हैं जो कार्य भगवान स्वयं नहीं करते। लेकिन यदि कोई वास्तव में विचार करे तो यह सब कार्य भगवान के द्वारा ही संभावित होता है। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद से, एक बार एक पत्रकार उनसे आकर के पूछ रहे थे, पाश्चात्य देश में एक पत्रकार आ रहे थे कि स्वामी जी आपकी दिनचर्या क्या है? तो प्रभुपाद के पास में ही उनके एक शिष्य बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ इशारा किया, तो वो बताने लगे कि स्वामी जी का यह कार्य है। स्वामी जी रात को 10 बजे सोते हैं, 12 बजे उठते हैं, वहां से पुस्तक लेखन आदि का कार्य करते हैं। लेखन कार्य के बाद प्रभुपाद कैसे मंगला आरती और दर्शन आरती करके अन्य प्रचार के कार्यों में लग जाते थे, और मंदिर आदि की व्यवस्था आदि को भी देखते थे, कई पत्रों का भी उत्तर देते थे। तो प्रभुपाद के इस दिनचर्या को सुन करके वह पत्रकार इतना अचंभित हुआ कि वह पूछने लगा कि स्वामी जी, आप इस अवस्था में, इस आयु में इतना कार्य कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं? उन्होंने पूछा कि आप इतनी रात को उठ करके इन पुस्तकों का लेखन करते कैसे हैं? तो श्रील प्रभुपाद बहुत साधारण सा एक उत्तर दिए। उन्होंने कहा, स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अब यह बात जब वह पत्रकार सुना तो और अचंभित हो गया। वो सोचा कि ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी, स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। तो पास में बैठे हुए जो शिष्य थे वे उस पत्रकार को समझाने लगे कि नहीं, स्वामी जी के कहने का अर्थ यह है कि यह जो पुस्तक लेखन का कार्य है, भगवान अपनी कृपा के द्वारा इनमें शक्ति का संचार करते हैं, और भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि का योग प्रदान करके अपने भक्त के द्वारा यह कार्य संपादित करते हैं। प्रभुपाद घूर करके अपने शिष्य को देखने लगे। प्रभुपाद कहे, नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पुस्तक लेखन का कार्य करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद के जीवन में यह देखा जा सकता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद अपने आप को निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची, और भगवान ऐसे कार्यों को, दुर्घटित को घटित कर देने वाले कार्यों को भगवान अपने भक्तों को निमित्त बना करके करा लेते हैं। तो यह है भगवान की जो ये प्रश्न उठा कि यह जो समुद्र मंथन का कार्य है किया किसने, तो वास्तव में यह समुद्र मंथन का कार्य किया है श्री भगवान ने, अपने भक्तों को निमित्त बना करके भगवान ने यह कार्य किया। अब प्रश्न उठता है कि इस समुद्र मंथन के कार्य में, कार्य को भगवान ने किया क्यों? तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसी प्रसंग में, इस कार्य के विषय में कहा कि एक एवेश्वर तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्थानाः समुद्रो मथनादिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से लीला कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, यह समुद्र मंथन का कार्य भगवान तो स्वयं, भगवान अकेले अकेले ही यह समुद्र मंथन का कार्य कर सकते थे, और मंथन करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान अपने श्री अंग से ही अमृत को प्रकट करके देवताओं को प्रदान कर देते। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक एवेश्वरे तस्मिन्, भगवान अकेले ही पर्याप्त थे यह कार्य करने के लिए, लेकिन सुर कार्य सुरेश्वर, भगवान एक कुछ अद्भुत लीला करना चाहते थे। विहर्तु कामा स्थान आह, भगवान की कुछ अद्भुत विहार करने की इच्छा थी, जिस विहार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह समुद्र मंथन का कार्य किया। तो इस लीला के द्वारा दूसरा प्रश्न जो यह उठा कि भगवान ने यह समुद्र मंथन का कार्य किया क्यों, तो विहर्तु कामा, भगवान अपने स्वयं विहार, अपनी लीला को करने के लिए, विहार लीला को करने के लिए और अपने वैभव का प्रकाश करने के लिए भगवान यह लीला करते हैं। जिस वैभव के प्रकाश को सारे लोग समझ नहीं पाते कि भगवान यह कार्य कर क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, इन वैभवों को, भगवान की इन दुर्ललित लीलाओं को स्मरण करते हुए श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं कि भगवान ऐसी दुर्ललित लीलाओं को करके अपने भक्तों को यह अवसर देते हैं जिसके द्वारा वह इन लीलाओं का गान कर सकें। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं, अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूली लवह शैलताम शैलम मृत्कणताम तृणम कुलिशताम वज्रतृण क्षीणताम वहनी शीतलताम हिमम दहनताम आयाति अस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने कृष्णाय तुभ्यं नमः। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऐसे अघटित कार्यों को घटा देते हैं, वो कहते हैं कि भगवान अंबोधि स्थलताम, भगवान पूरे के पूरे समुद्र को स्थल बना सकते हैं, अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम, और स्थल को जल बना देते हैं। द्वारका लीला में भगवान ने यह करके दिखाया, अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूली लवह शैलताम, एक धूल को एक कण को भगवान पर्वत के समान बना देते हैं, और इस समुद्र मंथन लीला में शैलम मृत कणताम, भगवान एक शैल को मृत कणिका के समान, मिट्टी की एक कणिका के समान भगवान ने उठा करके उस पर्वत को समुद्र में रख लिया। तो यह है भगवान की दुर्ललित लीलाएं, शैलम मृत कणताम त्रिणम कुलिशताम, भगवान एक तृण को वज्र के रूप में बना सकते हैं, और वज्र को व्रज्र तृण क्षीणताम, इंद्र के व्रज को वज्र जो गोवर्धन पर प्रहार कर रहा था इंद्र, उस वज्र को भगवान वज्रम तृण क्षीणताम, तृण के समान तिनके के समान छोटा बना देते हैं। वहनी दहनताम, अग्नि जो दाहक होती है, वहनी शीतलताम, उस अग्नि को भगवान शीतल बना देते हैं, और हिमम दहनताम, और हिम को भगवान दाहक बना देते हैं। आयात यस्य इच्छया, यह सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। और लीला दुर्ललितादभुत व्यसनिने कृष्णाय तुभ्यम नमः, ऐसे दुर्ललित लीला करने वाले भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से इस समुद्र मंथन लीला में भी ऐसी दुर्ललित लीलाओं के द्वारा भगवान अपने भक्तों को इस लीला गान का एक अवसर देते हैं। तो यह हुआ दूसरा कि भगवान लीला क्यों करते हैं। पहली बात कि जो समुद्र मंथन की लीला है वह सारा सारी की सारी लीला को संपादित किया श्री भगवान ने, किया क्यों, क्योंकि वह अपनी दुर्ललित लीला करके भक्तों को गान का अवसर देते हैं। और तीसरी कि अमृत प्राप्त हुआ किसे, यदि पूरी लीला पर विचार किया जाए तो अमृत प्राप्त किसे हुआ, किसे प्राप्त हुआ, देवताओं को। प्रकट में यही दिखता है कि देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन यदि विचार कीजिए कि यदि भक्तों, यदि देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ होता तो वही देवता जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई, सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की गंगा तट पर, तो वो देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव गोस्वामी के सामने रखा और कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये कलश लीजिए और मुझे ये श्रीमद् भागवत की लीला सुना दीजिए। तो किस अमृत की किस अमृत का महत्व है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुकाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम हुरहो रसिका भुवि भावुका। तो यह भागवत अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह वह तथाकथित अमृत जिसे भगवान की उस लीला के द्वारा समुद्र मंथन द्वारा देवताओं ने प्राप्त किया। यदि वह अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण होता तो वह देवता उस अमृत को लेकर के आए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, और जब लेकर के आए तो श्री सुखदेव गोस्वामी क्रुद्ध होकर के उन देवताओं को बोला कि इन्हें यहां से निकालिए, यह श्रीमद् भागवत का अपमान कर रहे हैं। भगवान की लीला कथा अमृत के सामने यह समुद्र से निकला हुआ देवताओं का अमृत किस काम का, और देवताओं को उस कथा से निष्कासित कर दिया गया। तो वास्तव में अमृत प्राप्त किसे हुआ, तो भगवान इस समुद्र मंथन लीला के द्वारा अमृत ना तो देवताओं को प्राप्त हुआ ना दैत्यों को प्राप्त हुआ, अमृत वास्तव में हम जैसे भक्तों को प्राप्त हुआ जो इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके, इन लीलाओं का चिंतन करके और इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके उस अमृत को प्राप्त करते हैं, जिस अमृत के लिए ही भगवान ने यह लीला पूरी की पूरी संपादित की। इसलिए बार बार श्रील सुखदेव गोस्वामी को आप भागवत में पाएंगे कि बार बार परीक्षित महाराज यही कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी नैषाति दुस्साह सुन्मा त्यक्तोदम अपि बाधते, हे सुखदेव गोस्वामी मुझे अब ये भूख प्यास बाधित नहीं करती है, नैषाति दुस्साह सुन्मा त्यक्तोदम अपि बाधते, क्यों मुझे भूख प्यास बाधित नहीं करती है, पिबंती त्वान मुखाम भोजम च्युत हरि कथा अमृतम, वास्तव में अच्युत की हरि कथा ही वास्तविक अमृत है, क्योंकि हम आपसे इस लीला अमृत का पान कर रहे हैं इसलिए मुझे ये भूख प्यास बाधित नहीं कर रही है। तो बार बार श्रीमद् भागवत में यही वर्णन आया कि वास्तविक अमृत वह है जहां भगवान की लीला कथा हो रही है। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कि वयम धन्यतमा लोके गुरोपि छत्र बंधवः वयम पिबामो मुहुस्त्वत्तः वयम पिबामो मुहुस्त्वत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, वयम धन्यतमा लोके, इस लोक में धन्यतम कौन है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं धन्यतम हूं, हम सब धन्यतम है। वयम धन्यतमालो के गुरोपी छत्र बंधव, यद्यपि मैं छत्र बंधु हूं, मैं पूर्ण रूप से क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैंने तो एक ब्राह्मण के सर में, ब्राह्मण के मुख में एक सर्प डाला था, मैं छत्र बंधु हूं, लेकिन मैं धन्यतम हूं। क्यों? क्योंकि वयम पिबामो मुहुस्त्वत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम, क्योंकि हम कृष्ण कथा अमृत का पान कर रहे हैं। तो इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि धन्यतम क्यों कह रहे हैं? तो श्रील परीक्षित महाराज के कहने का आशय है कि हम धन्य हैं। पहली बात, हम धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि गुरोपी, हमें आपके जैसा, हमें आप जैसा गुरु प्राप्त हुआ, सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु प्राप्त हुआ, इसलिए हम धन्य हैं। धन्यतर क्यों है? धन्यतर इसलिए है क्योंकि आप जैसे गुरु के मुख से हमें कृष्ण कथा रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम धन्यतर हैं। और धन्यतम क्यों है? क्योंकि आपके जैसे गुरु से हमें कृष्ण कथा अमृत बार बार मुह बार बार प्राप्त हो रहा है, इसलिए वयम धन्यतमालोके। इसलिए श्रीमद् भागवत की लीलाओं पर और इस समुद्र मंथन की लीलाओं पर यदि विचार किया जाए तो वास्तव में इस लीला के द्वारा भगवान ने अमृत उन भक्तों को दिया जो भक्त इस लीला कथा को श्रवण करके उस अमृत का आस्वादन करेंगे। जैसे इस लीला कथा में ही भगवान अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा करके, इसी अध्याय में आया कि कैसे मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्योत मूर्धनि भ्राजत विलुलित कच श्रग्धरो रक्त नेत्र जैत्रे दोर्भिर जगद भय दैर दंद शूकम गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिव शोभताथो धृताद्री। भगवान ने अपने अजित, अपने पीत कौशेय वास श्रीवत्सांकित वक्षस्थल, अपने श्याम सुंदर मदन मोहन रूप को वहां प्रकट करके अपनी रूप माधुरी अमृत को भक्तों को इन श्लोकों के द्वारा आस्वादन कराया। यह है पहला अमृत इस लीला के द्वारा जिसने भगवान जो भगवान ने हम जैसे भक्तों को इस अमृत का आस्वादन कराया। यह रूप माधुरी का अमृत भगवान ने इस लीला के द्वारा हम सब भक्तों को पान करवाया। इसके बाद भगवान ने एक और अमृत पान कराया, वह है अपनी गुण माधुरी का अमृत। भगवान ने अपने ही स्वरूप भगवान शिव के द्वारा उस विष का पान करके और अपने भक्तों को विष्णु स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा करके अपने गुण को प्रकाशित किया कि हे भक्तों, मेरे गुण पर विचार करो कि देखो मैं कैसे भक्त वत्सल हूं। अपनी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इस लीला के द्वारा अपनी गुण माधुरी का अमृत, पहली रूप माधुरी का अमृत भगवान ने पान करवाया, दूसरी गुण माधुरी का अमृत भगवान ने पान करवाया, तीसरा अपनी वैदग्धता के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा अपनी लीला माधुरी का अमृत भगवान ने मोहिनी मूर्ति आदि अवतारों के द्वारा, कूर्म अवतारों के द्वारा भगवान ने अपनी लीला माधुरी का अमृत हम जैसे भक्तों को प्रदान कराया। और अंततः भगवान ने अनेक अनेक स्वरूपों को इस लीला में धारण करके, भगवान ने कई स्वरूप धारण किए इस लीला में, आप विचार कीजिए भगवान ने कितने रूप धारण किए। भगवान सबसे पहले तो अजित रूप में आए, उसके बाद कूर्म रूप में आए, धन्वंतरी रूप में आए, मोहिनी मूर्ति के अवतार में आए, तो एक ही लीला में भगवान ने अपने कई नामों को प्रकट करके अपनी नाम माधुरी का भी अमृत भक्तों को प्रदान किया। और इसलिए ही श्रील जयदेव गोस्वामी जैसे कवि इसी नाम माधुरी के अमृत में और इसी लीला माधुरी के अमृत में रम जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि शितिरिति विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. तो ऐसे अपने भक्तों को भगवान अपनी नाम माधुरी का भी अमृत पान कराते हैं. इसलिए इस नाम माधुरी को प्रकट करने के लिए श्रीमती राधा रानी के द्वारा एक श्लोक है विदग्ध माधव में, जिसमें वो कहती हैं कि भगवान के नाम में कितना अमृत है. वो कहती हैं, तुंडे तांड विनिम तनुम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगिनी संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्याद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वये. तो श्रीमती राधा रानी के द्वारा विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा श्लोक, इसमें एक बहुत विशेष बात शिला रूप गोस्वामी ने लिखा कि भगवान के नाम अमृत, वह उस अमृत से कितना श्रेष्ठ है, इसको दर्शाने के लिए वो कहते हैं न जाने जनिता क्याद्भिर अमृत है कृष्णेति वर्णद्वयी. कि जब वह कृष्ण नाम तुंडे तांडविनी, जब तुंडा पर, जब जिह्वा पर नाचना प्रारंभ करता है, तो न जाने जनिता क्याद्भिर अमृत है, न जाने वह कैसा अमृत प्रकट करता है. और तृतीय विभक्ति के द्वारा, अमृत के द्वारा यह प्रकट किया ऋषि रूप गोस्वामी के द्वारा कि जिस प्रकार से समुद्र को मंथन करके अमृत प्रकट होता है, तो उसी प्रकार से न जाने पता नहीं कितने कितने ऐसे अमृत समुद्रों का मंथन करके यह नाम में ऐसा अमृत प्रकट होता है कि जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करके ये कहती हैं कि नो जाने जनिता क्या फिर अमृत है. कितने किस ऐसे अमृतों के समुद्र का मंथन करके, न जाने कितने ऐसे अमृत के समुद्र होंगे जिनका मंथन करके यह नाम माधुरी का अमृत भक्तों के बीच में प्रकट किया जाता है. तो श्री भगवान के द्वारा यह लीला इसीलिए संपादित की गई है कि वह भक्तों को वह अमृत प्रदान करें. इसलिए अंततः मैं विराम देने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि कैसे इसी लीला का आस्वादन करने के लिए, इसी लीला का आस्वादन करते हुए श्रील सुत गोस्वामी जब 12वें स्कंद में लीला का समापन हो रहा है, जब पूरी श्रीमद् भागवत को विराम देने का समय आया, तो श्रील सुत गोस्वामी भगवान की इसी समुद्र मंथन लीला को स्मरण करते हुए कहते हैं, पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालोकमठाकृतेर भगवतः श्वासानिला पान्तुवः यत् संस्कार कलानुवर्तन वशाद वेला निभे नाम भसा याता यातम तंद्रितम जल निधेर नद्यापि विश्राम्यति. तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, सुत गोस्वामी ने इसी कूर्म अवतार की लीला को स्मरण करते हुए कहा है कि हे भगवान, उस कूर्म अवतार में जब पर्वत आपके ऊपर रगड़ा जा रहा था, तो आपको वह निद्रा आ गई, और उसी निद्रा के रूप में भगवान, उस निद्रा में जब भगवान श्वास और प्रश्वास लेते हैं, तो उसी श्वास प्रश्वास के संस्कार को लेकर के आज भी समुद्र, जब भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आज भी समुद्र बाहर आता है, और जब भगवान श्वास अंदर लेते हैं तो आज भी समुद्र अंदर आता है. तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी इसी लीला से ही श्री सुत गोस्वामी ने इस लीला को स्मरण करते हुए भगवान की अंतिम स्तुति श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में की है. तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, और आप हमें क्षमा करेंगे यदि मैं अपने कुछ गलत बोल गया होऊंगा, तो इसलिए आप सब वैष्णव जन सारग्राही होकर के मुझे क्षमा करेंगे. श्रील प्रभुपाद की जय.